इन प्रीवियस चैप्टर यू सॉ दैट रुचिका और सुधीर की सगाई चल रही थी जिसमें मेहमानों का आना शुरू हो गया था। समारोह शुरू होता है और वेद मेहरा सहित सभी मेहमानों की एंट्री होती है। वेद मेहरा का युवराज वेद समारोह में आया था और सबसे घुलमिलकर बातें कर रहा था। रिंग सेरेमनी से पहले सारा, ज़ारा और फिज़ा अयान के बारे में बात कर रही थी जो समारोह में नहीं आया था। फिर अचानक जोया की नज़र एंट्री की ओर जाती है जहाँ अयान अपने माता पिता के साथ प्रवेश करता है। अयान और जोया एक दूसरे को देखते हैं। अयान वेद से मिलता है और फिर जोया के पास आता है। वेद जोया को भाभी कहकर संबोधित करता है और अयान जोया के कंधे पर हाथ रखता है, कहता है, बहुत जल्द इंशाल्लाह। आपका लिखा हुआ सीन बहुत ही रोचक है। इसमें फैमिली गैदरिंग का माहौल, अयान और जया का रिश्ता, वेद और वेदिका की बातचीत और आखिर में बच्चों की नोकझोंक, सब कुछ नेचुरल तरीके से आ रहा है। लेकिन पढ़ने में ये और स्मूथ और कनेक्टेड लगे, इसके लिए मैं इसे थोड़ा एडिट करके डायलॉग्स को क्लियर करके और ट्रांजिशन को स्मूथ बनाकर लिख देती हूँ। एडिटेड वर्जन स्मूथ नरेशन के साथ। जहाँ बलवंत और वेदिका खड़े आपस में बातें कर रहे थे, वहीं फैमिली गेस्ट्स भी मौजूद थे। उसी वक्त अयान अपनी वाइफ जया को साथ लेकर आया। मॉम जी, ये मेरा फ्रेंड है और इसकी वाइफ जया, अयान ने सहजता से जया का इंट्रोडक्शन कराया। जोया ने हल्की झिझक के साथ पहले वेद की तरफ देखा, फिर अयान की ओर। उसके मन में एक अजीब सी उलझन थी। वो जानती थी कि उनका रिश्ता तलाक की कगार पर है, फिर भी अयान सबके सामने उसे इतने आत्मीय भाव से अपनी वाइफ कहकर क्यों मिला रहा था। कुछ ही पल में वहां फोटोग्राफर आ गया। सब लोग एक साथ फोटो के लिए खड़े हो गए। तभी अयान ने जया के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। जया चौंक गई और अचानक उसकी ओर देखने लगी। बेगम साहिबा, आगे देखिए, तस्वीर खूबसूरत नहीं आएगी, अयान ने हल्के से मुस्कुराते हुए दिलकश अंदाज में कहा। उसके लहजे में जो अपनापन और शांति थी, वो जया के लिए बिल्कुल अनजाना था। वो चुपचाप कैमरे की तरफ देखने लगी, लेकिन उसके दिल में अयान के बदले हुए बर्ताव को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। बाहर से शांत है, लेकिन भीतर सवालों का तूफान। ये वही अयान है जो मुझसे नफरत करता था, तो आज ये सबके सामने मुझे अपनी बीवी कहकर क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा है? क्या ये बस दिखावा है, या फिर इसके दिल में सचमुच कुछ बदल गया है? अयान के दिल में जो भी बदल जाए, मगर जोया के दिल में ये के लिए कोई फीलिंग नहीं थी। जब अयान ने कंधे पर हाथ रखा और बेगम साहिबा कहा, तब उसके दिल में अनजाना सा कंपन हुआ। तलाक का ख्याल उसे भीतर से तोड़ता है, लेकिन वो मानती है कि शायद यही उनके रिश्ते की किस्मत है। अब अचानक अयान का ये बदलता रवैया उसके दिल में उम्मीद और डर दोनों जगा रहा है। फोटोग्राफर चला गया तो सब लोग फिर अपनी अपनी बातों में व्यस्त हो गए। वेदिका ने मुस्कुराते हुए जया से कहा, बेटा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अब देखो, इसके वेद के दोस्त भी शादी करने लगे हैं। इसका मतलब ये है कि इसे भी अब शादी कर लेनी चाहिए। मेरी तो टेंशन ही खत्म हो जाएगी। वेदिका चाहती थी कि वेद जल्द से जल्द शादी करके सेटल हो जाए। वेद अपनी माँ की बात पर हंस पड़ा। मॉम, आप फिर शुरू हो गई। आपको तो पता होना चाहिए, इनकी, अयान और जया की, शादी भी अभी पूरी नहीं हुई है। आधी शादी? वेदिका ने हैरानी से पूछा। उन्हें वेद की बात बिल्कुल समझ नहीं आई थी। हाँ, इन दोनों का निकाह तो सालों पहले हो गया था, मगर रस्में पूरी नहीं हुई, मतलब रुखसती रहती है। बस ये बात अलग है कि दोनों एक ही घर में रहते हैं, वेद ने मजाकिया अंदाज में कहा और साथ ही अयान की पसलियों में हल्की सी कोहनी मार दी। जोया ने उसकी ये शरारत महसूस की, लेकिन उसकी नज़र अयान पर थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि वेद जब ये कह रहा था तो अयान के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे इस रिश्ते का सच उसे भीतर से खुशी दे रहा हो। अयान उसकी समझ से बिल्कुल बाहर हो रहा था। तभी पास से बच्चों की तेज आवाजें आने लगी। किसी बात पर झगड़ा हो रहा था। सबका ध्यान उस तरफ गया तो देखा अवनी बाकी बच्चों के आगे अकड़कर खड़ी थी। उम्र में भले ही छोटी थी, मगर उसके हाव भाव ऐसे थे जैसे वो सब पर हुकूमत चला रही हो। उसने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे हुए थे और जोर जोर से डांट रही थी। अवनी के दांत गुस्से से भींचे हुए थे। उसने हाथ कमर पर रखकर सामने खड़े बच्चे से कहा, तुम हो कौन और मुझे क्यों डांट रहे हो? जाओ, अपने काम से काम रखो। इतने में वेद वहां पहुंचा। उसने बच्चों की ओर देखते हुए कहा, क्या बात है प्रिंसेस, इतना गुस्सा किस लिए? जय ने तुरंत शिकायत की, देखिए अंकल जी, ये मुझ पर हुक्म चला रही है। मैं इससे बड़ा हूं, लेकिन ये मुझे डांट रही है। वेद कुछ कह पाता उससे पहले जगत और अनन्या भी वहां आ गए। उन्हें लगा कि शायद जय किसी बच्ची को परेशान कर रहा है, क्योंकि जय के सामने अवनी छोटी लग रही थी। क्या हुआ जय, तुम क्यों इस छोटी बच्ची से झगड़ रहे हो? सॉरी बोलो, जगत ने सख्ती से कहा। जय झुंझलाकर बोला, झगड़ा मैंने नहीं किया, पहले इसने किया था। ये सबको धक्का दे रही थी, मैंने तो बस इसे रोका। अनन्या ने सिचुएशन संभालने के लिए बच्चों से कहा, अच्छा, अब दोनों एक दूसरे से माफी मांग लो और फिर फ्रेंड्स बन जाओ, हैंडशेक करो। सही बात है अवनी, तुम भी सॉरी बोलो बेटा, वेद ने अवनी से कहा। जय ने मासूमियत से अवनी की ओर देखा। सॉरी कहते हुए उसने हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन अवनी ने एटीट्यूड दिखाते हुए अपना हाथ पीछे कर लिया और तीखे लहजे में बोली, मैं सॉरी नहीं कहूंगी। वो अचानक से गुस्से में आ गई। इतना कहकर वो गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से निकलने लगी। वेद उसके पीछे पीछे गया। अरे सुनो अवनी, इतनी नाराज क्यों हो? गुस्सा किस बात पर कर रही हो? अवनी की आंखों में आंसू थे। उसने वेद की तरफ देखा और शिकायत से बोली, देखा अंकल, आपने मेरी साइड नहीं ली। आपने सबके सामने मुझे कहा कि मैं सॉरी बोलूं, जबकि गलती मेरी नहीं थी। मुझे अच्छा नहीं लगा, आप भी मेरी बात नहीं मानते। उसकी मासूम लेकिन गहरी चोटिल आवाज ने वेद को चुप करा दिया। अवनी ने आगे कहा, मैं मामा से कहूंगी कि मुझे कमरे में छोड़ाए, मुझे आपकी पार्टी में अब बिल्कुल नहीं रहना। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे सबसे बड़ा गुस्सा इस बात पर था कि वेद, जिसे वो दिल से अपना मानती थी, उसने भी उसकी तरफदारी नहीं की। अवनी गुस्से और रोने से कांप रही थी। तभी उसने साइड पर खड़ी मानवी को देखा। मानवी वहां खड़ी हुई अपनी ड्यूटी कर रही थी। वो देख रही थी कि सबको हर चीज, हर टेबल पर खाने पीने का सामान सही तरीके से पहुंच रहा था। अवनी दौड़कर उसके पास गई और जोर से उससे लिपट गई। मामा, अवनी की आवाज टूटी हुई थी। मानवी ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया। छोटी बच्ची उसके गले से लगकर सिसक सिसक कर रोने लगी। मानवी ने प्यार से उसके बाल सहलाए और उसे शांत करने लगी। उसकी आवाज बेहद नर्म थी। शांत हो जाओ अवनी, सब ठीक है, तुम इतना रो क्यों रही हो? वेद थोड़ी दूरी से ये सब देख रहा था। असल में वो अवनी के पीछे आया था। उसे अवनी का रोना और रूठ कर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। उसके मन में सवाल उठने लगे, ये बच्ची किसकी है, इसके माँ बाप कौन है? वेद की नजरें लगातार मानवी और अवनी पर थी। जैसे ही मानवी ने अवनी को गोद में लेकर बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए, वेद अनायास ही उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वो देखना चाहता था कि मानवी अवनी को कहाँ लेकर जा रही है। मानवी की गोद में सिर छुपाए अवनी अब भी धीरे धीरे सिसक रही थी। मानवी के चेहरे पर गहरी ममता थी, जैसे वो इस बच्ची को सिर्फ चुप नहीं करा रही थी बल्कि उसका दर्द बांट रही हो। क्या आगे चलकर वेद जान पाएंगे कि मानवी ही अवनी की असली माँ है? क्या वेद को यह सच्चाई मिल जाएगी कि अवनी दरअसल उसकी ही बेटी है? अयान के दिल में जोया के लिए जो एहसास है, क्या जया उन भावनाओं को स्वीकार कर पाएगी, या फिर उसके लिए ये सफर और मुश्किल हो जाएगा? प्लीज मेरी सीरीज पर अपने कॉमेंट जरूर करें, साथ ही रेटिंग भी दें। आपको मेरी कहानी कैसी लग रही है कॉमेंट में जरूर बताएं।
आपके कमेंट्स और प्यार से ही हमें लिखने का हौसला मिलता है।